हत्या की और हनुमान जी के छाती में वो बाण लगे। अंत में हनुमान जी महाराज ने बड़ा जोर दिखा करके उसके रथ सहित उसको उठा के फेंक दिया, वो राक्षस मारा गया। नल था, उसने प्रतपन को उठा करके जमीन पर पटक दिया और उसके नेत्र थे उसके शरीर से निकाल दिए। सुग्रीव ने सप्तपर्ण वृक्ष को उठाया और बड़े वेग के साथ उन्होंने अपने साथ युद्ध करने वाले राक्षस को मारा। उसका नाम था प्रघस, प्रघस को उन्होंने मारा। और लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा विरूपाक्ष को नष्ट कर दिया। राम जी ने तो चार बाण लिए, चारों राक्षसों को वहीं समाप्त कर दिया। महेंद्र ने वज्र मुष्टि को मारा, मुक्की से ही मारा। और पपात है, सरथ है, साश्व है, रथ सहित वो भी वज्र मुष्टि वहां पर मारा गया। निकुंभ का नील के साथ युद्ध हो रहा था तो भाई वो नील वास्तव में बड़ा बलवान था। उस नील के ऊपर निकुंभ ने बाण की वर्षा की, परंतु नील उन बाणों से बच करके और उसके बाद उसके रथ चक्र को लेकर नील ने उसका सिर का छेदन कर दिया। उसका सारथी वगैरह भी मर गया और वो भी समाप्त तो हो गया। द्विविध था, द्विविध ने अपने साथ युद्ध करने वाले राक्षस को मार दिया। इस प्रकार से सुसेन के साथ में जिस राक्षस का युद्ध हुआ था उसको उन्होंने अपने हाथ में पर्वत शिखर लेकर उस पर प्रहार किया। वो था विद्युन्माली, वो विद्युन्माली नष्ट हो गया। माने इन राक्षसों ने पराक्रम, सभी ने बड़ा विलक्षण पराक्रम दिखाया था, परंतु भाई वो अंत में मारे गए। इस द्वंद्व युद्ध के द्वारा बांदरों के अंदर एक बड़ा उत्साह आया। जिस प्रकार से देवता लोगों के द्वारा दैत्य लोग मारे जाते हैं, उसी प्रकार से इन बांदरों के द्वारा राक्षसों का संहार हुआ। और उसके बाद अस्ताचल में सूर्य भगवान अस्ताचल में चले गए, रात्रि हो गई। परंतु लंका में तो रात में भी युद्ध होता था। ये दैत्य लोग रात की इच्छा कर रहे थे कि रात हो जाए, रात हो जाए। रात की इसलिए इच्छा करते हैं कि रात्रि में निशाचरों को बल मिलता है। इनका नाम भी निशाचर है, रजनीचर है, क्योंकि रात्रि में इनको बल मिलता है। दिन में ये थके मांदे से रहते हैं। तो बांदरों का, राक्षसों का रात्रि के अंदर भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पर रात्रि के अंदर इन लोगों को ये पता नहीं होता था कि आगे राक्षस है कि बानर है। एक दूसरे से पूछना पड़ता था, राक्षस हो सी, क्या तुम राक्षस हो? वो पूछते कि बानर हो सी, तुम बानर हो? ऐसे अन्योन्यम समरे जगनू, कहते हाँ मैं राक्षस हूं। तो बानर उसको मारते और बानर कहते नहीं भैया मैं तो बंदर हूं, तो उसको छोड़ देते। रात्रि के अंदर और तो क्या बात थी, जोर जोर से आवाजों से पहचानते थे, मारो चीर, और जो है चीर दो, फेंक दो, इधर आओ उधर फेंको, और विद्रवसी, तुम भागते हो, तुम दौड़ते हो, ऐसे ऐसे आवाजें आ रही थी। उस समय में लोग ज्यादा पहचानते तो थे नहीं, लेकिन राक्षस लोग रात्रि के अंदर ज्यादा शक्ति रखते थे, इसमें संदेह की बात नहीं है। वो क्रोध से मूर्छित होकर के बड़े वेग के साथ बांदरों के ऊपर टूट पड़े और अपने घोड़ों को भी उन्होंने बांदरों पर चढ़ाया। बांदरों ने उस समय में उन घोड़ों को पकड़ करके उनके ऊपर सवार जो योद्धा थे उनको गिरा करके घोड़ों को और उनके सवारों को योद्धाओं को मारना चालू किया। कुंजरान कुंजरा रोहान, इसी प्रकार से हाथियों को और हाथी पर रहने वाले योद्धाओं को, लड़ने वाले योद्धाओं को भी मारा। पताकाओं को तोड़ तोड़ के फेंक दिया, रथों को तोड़ दिया। और उसके बाद वे बानर जोर जोर से किलकारियां करने लगे। राम और लक्ष्मण भी अपने हाथ में बाण लेकर के राक्षसों की सेना के अंदर बड़ा पराक्रम दिखाए थे। उस समय में दोनों ही तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं के पैर से उड़ने वाली जो मिट्टी थी, वो मिट्टी उड़ करके लोगों के नेत्रों के सामने आती थी और कानों में जाकर वो रुक जाती थी। लोगों को दिखना बंद हो जाता, एक तो रात और एक फिर मिट्टी और आए। वहां पर खून की मानो वर्षा नदी बह रही हो और लोग अपने अपने आवागमन को भेरी आदि नाद करके बताते थे। युद्ध के जितने बाजे थे वो बाजे जब बजते थे उस समय में राक्षसों के कलेजे बैठ जाते थे, और राक्षस लोग अपनी तरफ से जब बाजा बजाते थे तो बंदर लोग बहुत आश्चर्य करते थे। इस प्रकार से पर्वताकार बांदरों के द्वारा, अनेक इच्छानुसार रूप बनाने वाले राक्षसों के द्वारा बड़ा भारी वहां पर कोलाहल हुआ और युद्ध के लिए सब एक दूसरे को झोंकते चले जा रहे हैं। ततस्ते राक्षसास्त्रस्त्र तस्मिन् तमसि दारुणे, भयंकर रात्रि के अंदर राक्षसों को वो कालरात्रि के समान प्रतीत हुई और उन्होंने राम की तरफ खूब बाण छोड़े। क्रुद्ध वे राक्षसों के बाण को राम जी महाराज ने नष्ट कर दिया। और उस समय में मेघनाथ के साथ में राम जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राम लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने मेघनाथ के पास पहुंचने से पहले 6 अन्य राक्षसों को मार दिया था। यज्ञ शत्रु, दुर्धर्ष, महोदर, महापार्श्व, वज्रदंष्ट, महाकाय, सुक और सारण, ये सब के सब बाणों गई मर्मसू ताड़िता, इनको बाणों से ताड़ित किया, इनको घायल किया और ये लोग वहां से युद्ध से भग गए। और इनके अलावा जो दूसरे राक्षस आए थे उनको मार दिया। ये अभी घायल होकर के भग गए थे, इनको अभी राम जी ने मारा नहीं था। राक्षस लोग बड़े वीर थे, वे राम जी के सामने डटे रहे। जिस प्रकार से आप पतंगे आग में जाकर मरते हैं, उसी प्रकार राम के बाणों के अंदर राक्षस लोग मरने लगे। राम जी महाराज अपनी सेना के साथ रात्रि में आगे बढ़ रहे थे। उस समय में अंगद है वो राम जी की सहायता के लिए आया और मेघनाद को उस समय में उन्होंने रथ से हीन किया, घोड़े उसके समाप्त तो हो गए। तो इंद्रजीत है वो रथ को छोड़ करके, घोड़ों वगैरह को सब को छोड़ करके मर गए, तब क्या करें। फिर इंद्रजीत अदृश्य हो गया। इंद्रजीत माने मेघनाद। अब मेघनाद अदृश्य होकर के और वहां बालीपुत्र अंगद के ऊपर प्रहार करे। भगवान को पता चला कि मेघनाद तो बड़ा पराक्रम दिखा रहा है, तो मेघनाद के सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही आए। वहां पर अंगद पहले से थे ही। मेघनाद ने अदृश्य होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर ये सर्प वाले बाण हैं, ये सर्प बाण उनके ऊपर डाल दिए। नागपाश से उन दोनों को बांध दिया। नागपाश से पहले उनको बांध दिया, माने हाथ भी बांध दिए, छाती भी बंध गई, पैर भी बंध गए, गले पर भी सांप लग गए, और फिर उनको बाणों से बीन दिया। राम और लक्ष्मण उस समय दोनों के दोनों घायल हो गए। मेघनाद वहां पर माया से अपने आप को ढक लिया तो किसी को दिखाई न दे, और राम और लक्ष्मण दोनों बाणों से घायल हुए वे बेसुध हुए वे रणभूमि के अंदर गिर गए। उस समय में राम जी महाराज पड़े पड़े ही 10 बांदरों को आदेश दिए कि आप लोग मेघनाद के साथ युद्ध करो, परंतु मेघनाद अदृश्य हुआ हुआ जब इनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा तब ये बंदर आकाश के अंदर बहुत ऊंचे चले गए। देखें किधर होगा, 10 दिशाओं में 10 बांदर गए, पर मेघनाद इतना मायावी था कि वो उन बंदरों के पास में होता हुआ भी उनको दिखाई नहीं देता था। मेघनाद ने बड़ा पराक्रम दिखाया है। मेघनाद के बाणों से भगवान का शरीर क्षत विक्षत हो गया। एक तो अंधकार था, दूसरे में वो मायावी राक्षस था वो छिप जाता था, तीसरे में राम और लक्ष्मण घायल हो गए थे, अतएव बंदरों का उत्साह बिल्कुल समाप्त हो चुका था। और क्रुद्ध व मेघनाद राम जी पर और लक्ष्मण पर अदृश्य होकर फिर बाणों पर बाण बरसाने चालू किया। राम जी के शरीर से, लक्ष्मण जी के शरीर से बहुत सा खून निकल गया। शरीर में सबसे बड़ी जलाने की शक्ति खून में ही होती है। खून निकलने के बाद में फिर क्या रहता है, भगवान के शरीर से खून निकला। और उस समय में मेघनाद आकाश में छिपा हुआ जोर से गर्जना करके बोलता है, ओहो राम और लक्ष्मण, लंका में आकर युद्ध करने का फिर कभी साहस दिखाओगे? अरे मैं जब अंतरित होकर के युद्ध करता हूं तो मेघनाद भी, इंद्र भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, तभी तो मेरा नाम इंद्रजीत है। लंका देखोगे और यहां लंका की तरफ आंख निकालोगे, आंख से इसको देखोगे तुम्हारी आंख निकाल दी जाएगी। इन दोनों तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मैंने बाणों से आच्छादित कर दिया है। हे बानरो, तुम्हारे में यदि बल हो तो इनको बचाओ, ये दोनों अब मरने वाले, मैं इनको यमराज के लोक में भेज रहा हूं। इस प्रकार से वो कहकर के फिर राम और लक्ष्मण पर खूब बाण बरसाए, जोर से किलकारियां करे, नाद करे। अब एक तो काला कलूटा, एक छिप जाए, बंदरों के लिए बड़ी भारी मुश्किल हो गई। और वो भी बंदरों के ऊपर बाणों की वर्षा करें तो बंदर लोग सोचें किधर से अब लड़ाई करें, हम भी किधर से अपना बचाव करें, क्योंकि वो तो हमको देखता है लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। दोनों एक दूसरे को देखें, लड़ें, तब तो हम बहुत कुछ युद्ध कर सकते हैं। वे दोनों के दोनों बिचारे राम और लक्ष्मण जमीन के ऊपर गिर गए, लंबी लंबी श्वास लेने लगे। बंदरों ने अपनी तरफ से युद्ध छोड़ दिया और वे सब राम और लक्ष्मण के चारों तरफ आकर बैठ गए। राम जी के नाराज, राम जी के बाण अपने तूणीर में धरे रह गए, राम जी का धनुष वहीं पर पड़ा का पड़ा रह गया। और उस समय में राम जी महाराज को ऐसा देख करके सब निराश होने लग गए। लक्ष्मण जी थे, उन्होंने राम जी को देखा कि राम जी बेहोश है, लक्ष्मण निराश हो गए। लक्ष्मण ने और राम ने देखा कि लक्ष्मण भी बंधा हुआ है, तो वो राम उसको देख करके बेहोश हो गए। दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े बेहोश हो गए, संतापम परमम गता, और बंदरों के लिए बड़े संताप की बात हो गई। दोनों वीर बंधे हुए हैं, ऐसा विचार करके बानर लोगों ने सोचा कि अपने लोगों ने बिना सोची समझे युद्ध ठान लिया, बड़ी भारी गलती हुई। मरना तो हम मर जाएं, लेकिन राम और लक्ष्मण पर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद दोनों भाई जिस अवस्था में पड़े हैं उसी अवस्था में विभीषण और अंगद नील द्विविध मैन्द सुसेन कुमुद अंगद हनुमान ये सब वहाँ राम और लक्ष्मण के पास आए। राम और लक्ष्मण के उस समय में धीरे धीरे श्वास चल रहे थे। कई बांदरों को तो ये लग रहा था कि मानो इनका श्वास आना ही बंद हो गया हो, परंतु बहुत मंद श्वास थे। ये सब के सब बानर वहां स्तब्ध होकर के खड़े रहे। राम जी के हाथ एकदम निश्चेष्ट थे, शरीर से खून खून हो रहा था और वे किसी की बात कहने सुनने में अब समर्थ नहीं थे। बानर लोग बहुत दुखी हो गए थे। ये सब के सब विचार किए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो माया से कहीं छिप गया है। विभीषण जी महाराज के नेत्रों में जल भरे आया। विभीषण जी ने देखा कि अरे असुरों की माया, राक्षसों की माया बेचारे बंदर नहीं जानते हैं। विभीषण जी ने फिर अपने राक्षसी माया से इंद्रजीत को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि तो मेरे सामने ही खड़ा है। विभीषण जी ने उसको देख लिया। इस समय में वो बड़ा ताकत में बढ़ा हुआ है। वरदान के द्वारा ये अंतरित होने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। यह अपने तेज और यश के द्वारा, पराक्रम के द्वारा सबको अपने वश में किया हुआ है। इंद्रजीत ने अपना कर्म करते, अपना पराक्रम करके लोगों को उस समय में सुनाते हुए कहा, आओ खर और दूषण को मारने वालों, आज तुम्हारी क्या दशा हो रही सुन लो। तुम दोनों वो भी दो भाई थे तो तुम भी दो भाई हो। खर और दूषण को भी एक एक ने मारा था तो तुम दोनों को मैंने अकेले ने मारा है। अब मेरे बाण तुम्हारे शरीर में घुस गए, उनको कैसे निकालोगे? ये जहरीले बाण तुमको मार करके और तृप्त होंगे। अब ये रात तीन पहर वाली समाप्त हो रही है। लंका के ऊपर मेरे विजय का डंका बज चुका है। मैंने तुम्हारे युद्ध का जो मूल आधार था उसको समाप्त कर दिया है। अब तुम लोग व्यर्थ में युद्ध कर रहे हो। राम और लक्ष्मण की और बांदरों की सेना संहार को प्राप्त हो चुकी है। आप लोगों का बल मेरे बाणों में आ गया है, अतएव आपके पराक्रम निष्फल हो गए हैं। अब आपको जो कार्य करना है सो कर लीजिए। इस प्रकार से कहकर सभी राक्षसों को वो सुनाता है, सभी राक्षसों को वो भयमुक्त करता है और बड़े बड़े यूथप जो बांदर है उन बांदरों को वो प्रताड़ित करता है। नील के ऊपर उसने 9 बाण छोड़े, महेंद्र और द्विविध के ऊपर 3-3 बाण छोड़े, जामवंत के वक्षस्थल पर 1 बाण कस के लगाया, हनुमान के ऊपर उन्होंने 10 बाण लगाए, गवाक्ष और सरब के ऊपर उन्होंने 2-2 बाण लगाए और अंगद के ऊपर उन्होंने बहुत से बाणों की वर्षा की और ये सारे बाण कोई इनमें व्यर्थ नहीं गया। इन बांदरों के शरीर में जहां तहां वो लग गया और फिर वो जोर से अट्टहास करते हुए कहने लगा, देखा मेरा पराक्रम, मेरे गिनती के बाणों ने राक्षसों ने बांदरों के सारभूत जो ब्राह्मण है, सारभूत जो वानर है, उन सारे बांदरों को मैंने घायल कर दिया है। राक्षसों आओ, राम और लक्ष्मण को तुम उठा के ले चलो। राक्षस लोग आए बड़े हर्षित हुए, परंतु राम जी के पास आने में उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस समय राम और लक्ष्मण दोनों ही कई बांदरों से घिरे हुए थे। अतः किसी बांदर ने उन राक्षसों को राम के और लक्ष्मण के पास आने नहीं दिया। उधर मेघनाथ ने देखा कि राम और लक्ष्मण एकदम जमीन के ऊपर ऐसे पड़े जैसे कोई मरा हुआ होती तो मर ही गए हैं। इतने बाण जिनके लगे हुए और सर्प के द्वारा जो बंधे हुए वो जीवित थोड़े ही रहेंगे। तो हतौ ये जो है मर गए, उनको मरा हुआ समझ करके मेघनाद अपने विजय का डंका बजाते हुए लंका में चला गया और लंका में जाकर उसने सबको सूचना दी। इधर सुग्रीव जी महाराज के भाई बड़ी घबराहट हो गई। सुग्रीव के मन में बड़ा भय हो गया। सुग्रीव ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण अब मैं क्या करूं, मुझे यदि ऐसा मालूम होता तो राम और लक्ष्मण को मैं किष्किंधा में ही रखता, मुझे यदि यहां युद्ध करने के लिए इतने बांदरों को लाना था तो राम और लक्ष्मण को यहां लाने की जरूरत क्या थी, युद्ध के अंदर मरना ही तो होता है, ये मरने का काम हम लोगों के पाती आता, राम और लक्ष्मण तो वहां रहते। विभीषण मैंने बड़ी भारी गलती की। विभीषण जी रोते हुए विभीषण को समझाते हैं, विभीषण रोते हुए सुग्रीव को समझाते हैं, अलम त्रासीन सुग्रीव है बानर राज सुग्रीव, आप राजा हो, आप सबसे बड़े हो, आपको खेद व्यक्त नहीं करना चाहिए, आपके भीतर का शोक यदि आपके बाहर प्रकट हो गया तो सारे बांदरों का क्या होगा, हे सुग्रीव आप ये वाष्प वेग रोकिए, माने ये आंसू बहाना बंद कीजिए। युद्ध एक अनिश्चय की जगह हुआ करती है, युद्ध के अंदर किसी की जीत निश्चित नहीं होती, युद्ध ही एक ऐसा क्षेत्र है सुग्रीव जो प्रारब्ध को प्रबलता से बताता है कौन मरा है कौन जिया है, भाग्य ही इसमें काम आता है। सुग्रीव मैंने राम की नाड़ी देखी है, नाड़ी के अंदर बहुत सूक्ष्म स्पंदन हो रहा है, माने धीरे धीरे नाड़ी चल रही है, ये अभी बेहोश हुए हैं परंतु मरे नहीं है। पर्यावस्था प्यात्मानम अनाथम मांच वानर है, हे सुग्रीव आप अपने आप को संभालिए और मैं अनाथ हूं, मुझे भी संभालिए। सुग्रीव मैं लंका से भी रहित हो गया और आप लोग ये राम जी चले जाएंगे तो मेरी क्या दशा होगी, मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गया, इसलिए आप लोग स्वयं समर्थ हो, सावधान हो। देखो जो सत्य के अंदर पक्के रहते हैं, धर्म में जो लगे हुए हैं, उनको किसी प्रकार से मौत का सामना करना नहीं पड़ता है। उस समय विभीषण ने जल लिया और सुग्रीव के नेत्रों पर डाला, सुग्रीव ने नेत्र धोए और नेत्र वगैरह धोने के बाद सुग्रीव बैठ गए चुपचाप, विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद विभीषण जी ने फिर सुग्रीव को संभालते हुए कहा कि सुग्रीव सुनो, हमारे कहने से आप थोड़ा धैर्य धारण करो, इस संसार में किसी के प्रति अति स्नेह होता है वो मरने के लिए पर्याप्त होता है, जिसमें बहुत ज्यादा स्नेह होता है उसकी विपत्ति हमको भोगनी पड़ती है। देखो अपने मन में उदासी मत लाओ, अपने मन में घबराहट लाओगे उदासी लाओगे तो सब कार्य का विनाश हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बात कहता हूं, आप अपनी सेना को तैयार कीजिए, राम को जब तक होश न आ जाए तब तक बानर यहीं से यहां जावे नहीं, और जब राम को होश आ जाएगा तब आपका अपने आप ही भय मिट जाएगा। देखो राम पर कोई आपत्ति नहीं है और न राम अभी मरना चाहते हैं, जो व्यक्ति मरता होता है उसके चेहरे पर जो शोभा जो उसके म्लानता होती है वो म्लानता राम के चेहरे पर नहीं है, राम की शोभा ने राम का त्याग नहीं किया है, राम के चेहरे पर जैसी कांति होनी चाहिए ऐसी कांति अभी है, मरने वालों पर ऐसी कांति नहीं रहती। इसलिए सारे सैनिकों को तुम आत्मबल दो सुग्रीव। मैं भी सबको समझाता हूं, आप भी समझाओ, लेकिन आप कब समझाओगे? जब आप खुद समझे हुए होंगे। कान कान में जाकर बंदरों को ये बात कहनी होगी कि राम अभी घायल है, मरे नहीं है। बंदरों को रोको, और जिस प्रकार से रात्रि में पहने हुए कपड़े सुबह त्याग दिए जाते हैं, उसी प्रकार से अपने मन से तुम अपना घबराहट निकाल दो। विभीषण जी की कही हुई बात सुग्रीव को लगी और सुग्रीव ने सभी बांदरों को स्वस्थ रहने के लिए कहा। इधर बड़ी मायाओं को जानने वाला मेघनाथ अपनी सेना के साथ लंका में घुसकर सीधा पिताजी के पास गया और पिता के पास जाकर बड़े उत्साह से कहने लगा कि महाराज की जय हो, महाराज आपकी विपत्ति नष्ट हो गई है। आज मैंने अपने नागपास से राम और लक्ष्मण को पहले बांध लिया सर्पों से और फिर बाणी बाण से उनको रणांगण में मैंने सुला दिया है, और वे दोनों के दोनों बेटा, दशरथ के दोनों बेटा रणभूमि के अंदर मरे हुए पड़े हैं। रावण जोर से अट्टहास करके कहने लगा, साधुवाद पुत्र, साधुवाद, धन्यवाद, मेरा पुत्र हो तो ऐसे समाचार सुनाए, आओ बेटा तुमको आशीर्वाद दूं। ऐसा कहकर उसको अपने छाती से लगाकर उसके मस्तक को सूंघा और पूछा, मुझे पूरे युद्ध का वर्णन सुनाओ और बताओ कि वो दोनों किस प्रकार से मारे गए। ये सब बातें विस्तार के साथ मेघनाद ने रावण को सुनाया। रावण के मन में बड़ा हर्ष हुआ था। रावण ने सोचा कि अब राम और लक्ष्मण मर गए, ये बात प्रत्यक्ष सीता को दिखानी चाहिए। इधर राम जी के चारों तरफ हनुमान, अंगद, नील, सुसेन, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, जांबवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली, पृथु, गुढ़ानीक, ये वृक्षों को ले लेकर के, पर्वत शिखरों को लेकर के चारों तरफ से खड़े हैं कि संभवतः राक्षस इनको बेहोश अवस्था में ले जाकर मार देंगे, इसलिए इनकी हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। और इधर रावण ने मेघनाद का बड़ा अभिवादन अभिनंदन किया, बहुत उसका स्नेह किया, और अशोक वाटिका की राक्षसियों को बुलाया। बड़े गर्व के साथ रावण ने उन राक्षसियों से कहा, हे राक्षसियों, हमारा पुष्पक विमान लेकर अशोक वाटिका में जाकर तुम लोग सीता को उसमें बैठा कर रणभूमि में तुम जाओ और दिखाओ मरे हुए राम और लक्ष्मण किस प्रकार से हाथ पैर पसारे हुए हैं। सीता को बता दो कि राम और लक्ष्मण मर गए, अब तुम इनको चाह करके क्या करोगे, अब तुम मुझे चाहो। जब सीता अपने नेत्रों से मरे हुए राम और लक्ष्मण को देख लेगी तब उसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इसी राम के आश्रय से लंकापति रावण का कितना सीता ने तिरस्कार किया है। सीता राम को मरा हुआ और राम को देखकर निशंक हो जाएगी, उद्विग्न रहित हो जाएगी, और फिर सीता के लिए आप लोग मेरे महल में आकर अच्छे अच्छे आभूषण लाकर उसको पहनाओ और उस सीता को खूब आभूषणों से सजा करके हमारे महल में ले आओ। रावण का ये सपना था, दुष्ट रावण का। राक्षसियों ने कहा कि तथास्तु, ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। राक्षस्यास्तास तथेत्युक्त्वा, तथा, ऐसा ही होगा। राक्षसियां गई और पुष्पक विमान को लेकर के रावण की आज्ञा से अशोक वाटिका में उसे स्थापित किया गया और सीता से कहा कि हे सीता जी, आप इसमें बैठिए। सीता जी ने कहा, क्यों? त्रिजटा ने इशारा किया कि नहीं नहीं सीता जी, आओ बैठो, मैं आपके साथ हूं। अच्छी बात है। त्रिजटा ने सीता को अपने साथ में लेकर उस पुष्पक विमान में बैठाया और उस पुष्पक विमान के द्वारा वे ऊंचे आकाश में ले गए और पुष्पक विमान के अंदर कई प्रकार की आवाजें होती थी। उस पुष्पक विमान को ले जा करके और बताया गया आकाश से, देखो ये राम यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है, लक्ष्मण यहाँ मरा हुआ पड़ा है। पुष्पक विमान का संचालन किया था स्वयं रावण ने, रावण पुष्पक विमान को स्वयं संचालित कर रहा था। बानरों को दिखाया, बानर कोई तो यूं पड़े हैं, कोई कैसे पसरे हुए हैं, किन्हीं के बाण लगा हुआ है, कोई शांत बैठे हुए हैं। राम जी महाराज को और लक्ष्मण को इस प्रकार से मरा हुआ समझ करके सीता बहुत विलाप करने लगी। सीता बड़ी दुखी हो गई। सीता देख रही है कि लक्ष्मण के और राम के कवच टूटे हुए हैं, उनके पास के धनुष है वो यूं पड़े हुए हैं, उनके तुणीर है, उन तीरों तुणीरों में कोई धनुष रहा ही नहीं, वो बाण रहे ही नहीं। दोनों राजकुमारों को देख करके वो दुखी हो गई, बार बार विलाप करने लगी। अपने पति के लिए वो विलाप करते हुए सीता रोती हुई बोलती है कि ओहो, मुझे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने एक बात कही थी कि सीता तुम्हारे दो पुत्र होंगे, सीते तुम कभी भी विधवा नहीं होगी, लेकिन आज इन ज्योतिषियों की बात झूठी हो गई। मुझे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था कि सीते तुम एक बहुत बड़े देश की बड़ी भारी रानी होगी, सीते तुम एक बहुत बड़े राजा की पत्नी होगी।